नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नर्टरी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। कंप्यूटर सिमुलेशन ऑफ लिक्विड्स, माइकल पी एलन और डोमिनिक जे टिल्लेस्ली की संघनित पदार्थ के संगणकीय अध्ययन पर केंद्रित व्यावहारिक पाठ्य पुस्तक है। इसका दूसरा संस्करण आणविक गतिकी और मोटे कार्लो विधियों के माध्यम से सरल तथा जटिल द्रवों का मॉडल बनाने, प्रोग्राम चलाने और परिणामों की विश्वसनीय व्याख्या करने का आधार देता है। पुस्तक का विषय केवल तरल पदार्थों तक सीमित नहीं रहता। यह बताती है कि कणों के बीच परस्पर क्रियाओं के चुने हुए मॉडल से संरचना, ऊर्जा, दाब और समय पर बदलने वाली गतिशीलता जैसी मापनीय विशेषताएं कैसे निकाली जाती हैं। सांख्यिकीय यांत्रिकी को संगणकीय एल्गोरिदम से जोड़ना इसका केंद्रीय उद्देश्य है। इसमें लंबी दूरी के बल, समानांतर सिमुलेशन और आंकड़ों के विश्लेषण जैसे व्यावहारिक प्रश्न भी शामिल है। फोर्ट्रान और पाइथन के साथ दिए गए उदाहरण सिद्धांत को क्रियान्वयन से जोड़ते हैं, इसलिए यह पुस्तक प्रयोग, सिद्धांत और कोड के बीच संबंध समझने वाले भौतिकी, रसायन और पदार्थ विज्ञान के विद्यार्थियों तथा शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी मार्गदर्शिका है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, सांख्यिकीय यांत्रिकी से सूक्ष्म विन्यासों और स्थूल गुणों का संबंध। पुस्तक का बुनियादी तर्क यह है कि किसी द्रव का तापमान, दाब या आंतरिक ऊर्जा सीधे एक अकेले कण से नहीं समझी जा सकती। ये बहुत बड़ी संख्या में कणों के विन्यासों और उनके सांख्यिकीय औसतों से उभरते गुण हैं। इसलिए सिमुलेशन का काम केवल कणों को स्क्रीन पर चलाना नहीं, बल्कि सही सांख्यिकीय समष्टि के अनुसार विन्यासों का नमूना लेना है। सांख्यिकीय यांत्रिकी इस चयन के नियम देती है और बताती है कि किस परिस्थिति में ऊर्जा, आयतन, कण संख्या अथवा तापमान को नियंत्रित माना जाएगा। यह आधार आवश्यक है, क्योंकि गलत समष्टि, अपर्याप्त नमूनाकरण या असंतुलित प्रारंभिक अवस्था से निकले औसत भौतिक रूप से भ्रामक हो सकते हैं। पुस्तक इस संबंध को संगणकीय भाषा में रखती है। मॉडल विभव कणों के बीच बल और ऊर्जा निर्धारित करता है, जबकि एल्गोरिदम उन विन्यासों तक पहुंचने का तरीका देता है। फिर संरचनात्मक सहसंबंध, अवस्था समीकरण और ऊष्मागतिक राशियों की गणना की जाती है। इस दृष्टि से सिमुलेशन सिद्धांत का विकल्प नहीं है। वह सिद्धांत के सांख्यिकीय निष्कर्षों को सीमित लेकिन स्पष्ट मॉडल पर परखने का उपकरण है। पाठक सीखता है कि किसी परिणाम का अर्थ तभी है जब मॉडल, समष्टि, औसत और त्रुटि का संबंध स्पष्ट हो। दूसरा, आणविक गतिकी में न्यूटन के नियमों से द्रव की समयगत चाल का अनुकरण। आणविक गतिकी विधि में कणों की स्थितियां और वेग समय के छोटे चरणों में आगे बढ़ाए जाते हैं। प्रत्येक चरण पर चुने गए परस्पर क्रिया विभव से बल निकाले जाते हैं और न्यूटन के गति नियमों के आधार पर अगली अवस्थाएं अनुमानित की जाती है। इस प्रक्रिया की विशेषता यह है कि यह केवल संतुलन औसत नहीं देती, बल्कि समय के साथ होने वाली गति का पथ भी देती है। इसी कारण विसरण, वेग सहसंबंध और शिथिलीकरण जैसी गतिशील राशियों का अध्ययन संभव होता है। पुस्तक इस पद्धति को गणितीय सूत्रों के संग्रह की तरह नहीं रखती, बल्कि संख्यात्मक निर्णयों से जोड़ती है। समय चरण बहुत बड़ा होने पर ऊर्जा संरक्षण और कक्षाओं की स्थिरता बिगड़ सकती है। बहुत छोटा चरण गणना को महंगा बनाता है। तापमान या दाब नियंत्रित करने की प्रक्रियाएं भी उपयोगी हैं, लेकिन वे वास्तविक गतिकी की व्याख्या को प्रभावित कर सकती हैं। आवर्ती सीमा शर्तें और कट ऑफ जैसी तकनीकें सीमित सिमुलेशन बॉक्स को थोक द्रव के निकट लाने का प्रयास करती है, पर उनके प्रभाव जांचने पड़ते हैं। इस तरह पुस्तक बताती है कि विश्वसनीय आणविक गतिकी केवल कोड चलाने से नहीं बनती, उसके लिए बल क्षेत्र, समाकलन योजना, नियंत्रण विधि और मापे जाने वाले समय पैमाने के बीच संगति चाहिए। तीसरा, मोंटे कार्लो नमूनाकरण और स्वीकृति नियमों से संतुलन गुणों की गणना। मोंटे कार्लो विधि का उद्देश्य वास्तविक समय में कणों की चाल की नकल करना नहीं, बल्कि उन विन्यासों को कुशलता से चुनना है जो वांछित ऊष्मागतिक अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी कण को स्थानांतरित करने, आयतन बदलने या अन्य प्रस्तावित परिवर्तन के बाद ऊर्जा परिवर्तन देखा जाता है। फिर एक संभाव्य स्वीकृति नियम तय करता है कि नया विन्यास रखा जाए या अस्वीकार किया जाए। इससे उच्च ऊर्जा वाले विन्यास सामान्यतः कम स्वीकार होते हैं, लेकिन पूरी तरह निषिद्ध नहीं होते। यही विशेषता प्रणाली को सही सांख्यिकीय वितरण की ओर ले जाती है। पुस्तक में इस विधि की शक्ति और सीमा दोनों स्पष्ट हैं। संतुलन संरचना, ऊर्जा और अवस्था समीकरण के लिए मोंटे कार्लो अक्सर अत्यंत प्रभावी है, विशेषकर जब जटिल गतिकी का प्रत्यक्ष अनुकरण जरूरी ना हो। पर स्वीकृत चालों की संख्या को भौतिक समय नहीं मान सकते, इसलिए इसे विसरण या वास्तविक शिथिलीकरण दर जैसी समयगत विशेषताओं के लिए सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चाल का आकार, स्वीकृति अनुपात और सहसंबद्ध नमूनों की समस्या व्यावहारिक परिणाम की गुणवत्ता तय करते हैं। अलग समष्टियों में कर्ण संख्या, आयतन या दाब से संबंधित चालों का चयन भी बदलता है। पुस्तक पाठक को यह समझ देती है कि एल्गोरिदम की सुविधा और प्रश्न की भौतिक प्रकृति के आधार पर मोंटे कार्लो या आणविक गति की चुननी चाहिए। चौथा, लंबी दूरी के बल, सीमित आकार और समानांतर गणना की व्यावहारिक चुनौतियां। द्रव सिमुलेशन में सबसे सरल मॉडल भी गणनात्मक रूप से कठिन हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक कण अन्य अनेक कणों से प्रभावित होता है। कम दूरी वाले विभव में कट ऑफ लगाकर गणना घटाई जा सकती है, लेकिन कट ऑफ का चुनाव ऊर्जा, दाब और संरचना पर असर डाल सकता है। विद्युत स्थैतिक जैसे लंबी दूरी के बलों में समस्या अधिक गंभीर है। केवल निकटतम कणों को जोड़ना पर्याप्त नहीं होता, इसलिए विशेष योग तकनीकों की जरूरत पड़ती है। पुस्तक इन मुद्दों को सिमुलेशन की गॉड प्रोग्रामिंग समस्या नहीं, बल्कि मॉडल की भौतिक विश्वसनीयता का हिस्सा मानती है। सीमित संख्या में कर्ण और आवर्ती सीमाएं भी परिणामों को प्रभावित करते हैं। किसी सहसंबंध की लंबाई बॉक्स के आकार के बराबर होने लगे तो छोटे तंत्र का परिणाम थोक पदार्थ का प्रतिनिधि नहीं रह सकता। दूसरी ओर अधिक कणों का अर्थ अधिक गणना और स्मृति है। समानांतर सिमुलेशन इस लागत को कई प्रक्रमकों में बांट सकता है, लेकिन कार्य विभाजन, संचार और पुनरुत्पादकता की नई समस्याएं लाता है। पुस्तक की उपयोगिता यह है कि वह दक्षता को केवल गति नहीं मानती। सही पड़ोसी सूचियां, बल गणना, सीमा उपचार और समानांतर विन्यास तभी मूल्यवान है जब वे नियंत्रित त्रुटि के साथ भौतिक प्रश्न का उत्तर दे। अंत में संरचना, गतिशीलता और अनिश्चितता के लिए परिणामों का सावधान विश्लेषण सिमुलेशन से बड़ी मात्रा में कच्चा आंकड़ा मिलता है। पर आंकड़े अपने आप वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं बनते, पुस्तक परिणामों के विश्लेषण को स्वतंत्र और अनिवार्य चरण मानती है। कणों के बीच दूरी का वितरण, युग्म वितरण फलन और उससे जुड़ी संरचनात्मक राशियां यह बताती है कि द्रव में स्थानीय व्यवस्था कैसी है। समय सहसंबंध फलन और माध्य वर्ग विस्थापन जैसे माप गतिशीलता, स्मृति और विसरण की जानकारी देते हैं। लेकिन इन राशियों की व्याख्या के लिए संतुलन तक पहुंचना पर्याप्त लंबी चाल और नमूनों की स्वतंत्रता आवश्यक है। लगातार समय चरणों से लिए गए आंकड़े प्रायः परस्पर सहसंबद्ध होते हैं, इसलिए केवल बहुत अधिक प्रेक्षण होने से त्रुटि अपने आप छोटी नहीं होती। ब्लॉक औसत, नमूना माध्य और त्रुटि आकलन जैसी प्रक्रियाएं इस जोखिम को पहचानने में सहायता देती हैं। पुस्तक यह भी संकेत करती है कि सिमुलेशन परिणाम को प्रयोग या सिद्धांत से मिलाते समय मॉडल की सीमाएं नहीं भूलनी चाहिए। सरल गोलाकार कणों वाला विभव किसी वास्तविक अणु की हर रासायनिक विशेषता नहीं पकड़ता, फिर भी यदि प्रेक्षण योग्य राशि, इकाइयां, सीमा स्थितियां और त्रुटियां स्पष्ट हों तो सिमुलेशन मॉडल की उपयोगिता और विफलता दोनों को सटीक ढंग से दिखा सकता है। यही विश्लेषणात्मक अनुशासन चित्रों और संख्याओं को भरोसेमंद भौतिक प्रमाण में बदलता है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन स्नातकोत्तर विद्यार्थियों, शोध आरंभ करने वालों और कार्यरत वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जिन्हें आणविक स्तर पर द्रवों का सिमुलेशन समझना या विकसित करना है। भौतिकी, रसायन, रासायनिक अभियांत्रिकी और पदार्थ विज्ञान के पाठक इससे सबसे अधिक लाभ पाएंगे। पाठक को बुनियादी प्रोग्रामिंग और सांख्यिकीय यांत्रिकी का कुछ परिचय हो तो पुस्तक का व्यावहारिक मूल्य और बढ़ जाता है। हालांकि इसका उद्देश्य केवल विशेषज्ञों के लिए तैयार संदर्भ ग्रंथ होना नहीं है, यह मॉडल चुनने, समष्टि निर्धारित करने, आणविक गतिकी या मोंटे कार्लो विधि का चुनाव करने, गणनात्मक त्रुटियों को पहचानने और आंकड़ों से सावधान निष्कर्ष निकालने की व्यवस्थित समझ बनाती है। इसका प्रमुख अंतर सिद्धांत, एल्गोरिदम और क्रियान्वयन के बीच निरंतर संबंध है। कई पुस्तकों में सांख्यिकीय यांत्रिकी अमूर्त रहती है या सॉफ्टवेयर उपयोग की चर्चा सिद्धांत से अलग होती है। एलन और टिल्डेसली इन दोनों स्तरों को एक ही कार्य प्रवाह में रखते हैं। लंबी दूरी के बल, समानांतर गणना और परिणाम विश्लेषण को शामिल करने से यह केवल आरंभिक परिचय नहीं रह जाती। साथ के फोरट्रान और पाइथन उदाहरण पाठक को तैयार पैकेज पर निर्भर रहने के बजाय मूल गणना के घटकों को देखने देते हैं। यही कारण है कि यह पुस्तक सिमुलेशन से उत्तर प्राप्त करने के साथ साथ उन उत्तरों की सीमा और विश्वसनीयता जांचने की वैज्ञानिक आदत विकसित करने वाली पाठ्य पुस्तक के रूप में अलग पहचान रखती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं माइकल पी एलन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।